खुलासा रिकैप क्या है, मैं चंद सवाल पूछती हूँ, आप लोगों ने हाथ खड़ा करना है। ये बताइए कि या बनी इसराइल के नाम से क्यों मुखातिब किया गया इन आयात में बनी इसराइल को? नंबर एक, आर दिलाने के लिए, शर्म दिलाने के लिए, बाप दादा की निस्बत से उनको याद दिलाया जा रहा है कि नबियों की औलाद होकर तुम ऐसे क्यों बनते हो, और साथ ही साथ मोहब्बत दिलाने के लिए कि बाप का नाम इंसान के लिए मोहब्बत का जरिया है। तो अगर ये सवाल कोई आपसे पूछे तो हमेशा उंगलियों पे आ जाए। आप देखिए, आपने खुद भी देखा होगा, अभी ना चाहते हुए भी मैं अपनी उंगलियों पे यूं करने लग गई। तो जो चीज़ पॉइंट्स में होती है ना, वो हमारे जहन को बिल्कुल जमा कर देती है। ये बताइए कि फद्दलतुकुम अलल आलमीन, अल्लाह ताला ने यहूद को क्या क्या फजीलतें दी थी, क्योंकि आपने देखा कि इस सबक में हमने फजीलतों पर बात की। जी जी बताइए जल्दी से। वो तो नेमत थी, प्रॉफिटिज्म की नेमत थी, चूज़ किया ठीक है, लेकिन और भी था। जी शाबाश, आपने जीनियस से बात शुरू की, लेकिन पहला सेंटेंस आपको नहीं बोलना चाहिए था, इसने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। आप बस, आपने, मैं आपको समझा रही हूँ ना तरीका सवा। अब अगर आप ये बोलते कि उनको ये फजीलत दी थी, उनको ये खूबियाँ दी, तो ये तो वही बात है जो पूछी गई। तो आप क्या कह सकते हैं, शाबाश के एक उनको जीनियस बनाया, उनके अंदर ब्रेन बहुत अच्छा दिया, ऑर्गेनाइज बहुत सारे हैं, टाइम का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, मनी मैटर्स में बहुत स्ट्रांग हैं, फोर हेडेड, आप वक्त से पहले देखते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करते हैं, वो सारी खूबियाँ जी इनके अंदर, अपना प्रेजरिस बहुत है, यानी अपने नाम के साथ इनको बहुत मोहब्बत है। ये बताइए कि चार खराबियां हमने पढ़ी पीछे बनी इसराइल के अंदर जो आ गई थी, जिसकी वजह से इनका अकीदा आखरत कमज़ोर हो गया था, वो कौन सी थी? जी आप नंबर वन कंफ्यूज थे जी, और चार खराबियां क्या थी? पहली खराबी क्या थी? कहते थे हम नबियों की औलाद हैं, लिहाजा नबी हमारी सिफारिश करेंगे तो क्यामत के दिन हमारे काम आएंगे। दूसरी बात यह कि हज़रत इब्राहिम को ख़ास तौर पे एक सोर्स समझते थे क़यामत के दिन हमारी बख्शिश का। फिर दूसरी बात क्या कहते थे कि कोई हम में से गुनाह करेगा लेकिन हमारे नेक लोग उनके आएंगे। वही चार चीज़ें, ला तज़ नफ्सुन नफ्सुन शैय्या वला युक़बलु मिन्हा शफ़ातुन, वही चार चीज़ें आपने अपने लफ्ज़ों में बतानी है। ये बताइए कि क़यामत के दिन जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, तो क्या अल्लाह के नबी भी अपनी बीवियों के काम नहीं आएंगे? आएंगे, लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं कि जहाँ रोक दिए जाएंगे। हज़रत आयशा की मिसाल, वो कौन से तीन मकाम थे जो अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से कहे थे? नंबर एक, जी एक जी आप बताइए पीछे से, शाबाश, पुल सरात के पास। दूसरा जी पीछे से रिजवाना, हिसाब किताब नामा माल तुल रहे होंगे। और तीसरा बट रहे होंगे, बिल्कुल। अच्छा जी, ये बताइए कि क़यामत के दिन सिफारिश बिल्कुल नहीं होगी या होगी? होगी मगर शराइत के साथ। शराइत क्या है जी? नंबर एक, हुमा काबिलियत होनी चाहिए, जिसकी सिफारिश की जा रही है उसके पास कोई रुकावट ना हो, कि उसका कोई अमल रज़ाया ना हो जाए जो उसकी रुकावट हो, और क़यामत के दिन सिफारिश उसकी होगी जिसको अल्लाह ताला इजाज़त देंगे, ठीक है। आयत 49 में हमने देखा कि बलाओं में रब्बी को मजीम, इससे क्या पता चलता है? जी फिरौन बेटों को ज़िबा करा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ये रब की तरफ से आजमाइश है। जी बताइए आप, कि इससे ये पता चलता है कि जब कभी किसी जगह पे हुक्मरान जुल्म करते हैं तो वो अल्लाह का अजाब होता है उस कौम पे। ये बस इसका जवाब है कि अल्लाह ताला बीच में होता है, कौम जो हुक्मरान जो होते हैं वो बाहर दिख रहे होते हैं। जी ये बताइए कि इस नजई नाकुम, हमने तुमको निजात दी, इससे क्या पता चल रहा है? देखिए, नजई नाकुम में से क्या पता चलता है कि हमने तुमको निजात दी, इससे पता ये चलता है कि जब किसी मजलूम कौम को भी किसी जगह से निजात मिलती है तो अल्लाह के हुक्म से मिलती है, कोशिश उनकी होती है लेकिन उसके। चलिए, अब मूसा अलैहिस्सलाम के आने के दो मकासद थे, कौन से? पहला मकसद क्या था मूसा अलैहिस्सलाम के आने का? जी पीछे से आप, शाबाश, बनी इसराइल को फिरौन से आज़ाद करवाना। दूसरा जी पीछे से आप, तौरात का मिलना, ठीक है। अच्छा ये बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री आपकी ज़िंदगी में कितनी जहन में, 10-20% आगे तरतीब से वाक़यात, ठीक है, वो आगे जाके आपसे पूछूंगी। ये बताइए कि हाज हिल करिया, आयत नंबर 58 में है कि तुम इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, इससे कौन सी बस्ती मुराद है? जी आप पीछे से, बैतुल मक़दस मुराद है, और बास कहते हैं कि उसके करीब का कोई इलाका भी था। ये बताइए कि बैतुल मक़दस किसके हाथों फतह हुआ था? जी आप इधर से बताएंगे, उमरी यूशे बिन नून के हाथों हुआ था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हुआ था। ये बताइए कि उसके बाद ये कहा कि तशकुरून, आयत नंबर 58 से हमारे लिए अमल की क्या बात है कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें हमने फतह दी ताकि तुम शुक्र करो, इससे क्या पता चलता है? जी इधर से, सामने से आप बताए ना, शुक्र करना चाहिए जब एक इंसान को कोई नेमत मिले तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र। लफ्ज़ हेता तुन को उन्होंने कैसे बदल दिया? हेंता तुन, और या फिर हेता तुन को किस तरह से कर दिया? हेंता तुन, हेंता तुन का मानी क्या होता है? दाना वाली में, और दूसरी तरफ क्या होता है कि उसको चेंज कर दिया गया। मुराद यही था कि उन्होंने लफ्ज़ों को, इससे अमल की बात क्या निकलती है कि अल्लाह सुबहाना ताला जब कोई नेमत दे तो उस नेमत को बदलना नहीं चाहिए। और आप देखिए कि बातों को बिगाड़ना, लफ्ज़ों को बदल देना, ये भटकी हुई कौमों का मिजाज होता है। अब आप देखिए कि ये सब कुछ हमने पढ़ लिया बनी इसराइल के नाते से, क्या आपको इसमें अपनी भी कोई कहानी दिखती है? बिल्कुल दिखती होगी। हम मुसलमान अगर आज अपने आप को इस पे लेके देखें तो वो यकीन करें, कहते हैं कि बात दूसरे की थी लेकिन वो नाम हमारा अपना निकल आया। कि बज़ाहर बनी इसराइल ये काम करते हुए दिखते हैं और हमारी नज़रों में वो बुरे बन रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला इन सारी आयात में हम सबको सिखाता है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते। अब यहाँ से इंशाल्लाह तआला हम आज आगे चलेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए अल्लाह तआला ने इन आयात में क्या चीज़ें रखी हुई हैं और हम इनसे किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। सारे रिकैप से आपका जहन दोबारा वापस आ जाता है उस जगह पे जहाँ पे होना चाहिए, और अगर आप सिर्फ इस रिकैप के पॉइंट्स नोट कर लिया करें तो आप पूरी तफसीर समझ सकते हैं।